एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने प्रकाशन के साथ ही काफी हलचल मचाई थी। ब्रूस होल्सिंगर का 2019 का उपन्यास द गिफ्टेड स्कूल। होल्सिंगर की पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है, आप जानते हैं। वो मूल रूप से मध्यकालीन साहित्य के विद्वान हैं, लेकिन फिर उन्होंने समकालीन विषयों पर लिखना शुरू किया।
हाँ, और ये उपन्यास उनका सोशल सटायर मतलब सामाजिक व्यंग की तरफ एक बड़ा कदम था।
बिल्कुल।
और आते ही ये बेस्टसेलर बन गया, रीस विदरस्पून बुक क्लब का हिस्सा भी बना।
हाँ।
और इसका समय भी देखिए, ये तब आया जब अमेरिका में शिक्षा, अमीरी के विशेषाधिकार और पेरेंटिंग के तरीकों पर मतलब जोर शोर से बहस चल रही थी।
सही।
असल जिंदगी के वो वर्सिटी ब्लूज जैसे स्कैंडल सामने आ रहे थे ना, जहां पता चला कि कैसे अमीर माँ बाप अपने बच्चों को टॉप कॉलेजों में पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे।
हाँ, गलत रास्ते अपना रहे थे। ये किताब उसी नब्ज को पकड़ती है।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी उपन्यास के गहराइयों में उतरेंगे। हम कहानी के ताने बाने, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव और उन बड़े सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये आधुनिक पेरेंटिंग की महत्वाकांक्षा, नैतिकता और वो जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है ना, उस पर उठाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक ऊपरी तौर पर बिल्कुल आदर्श दिखने वाले समुदाय में एक छोटी सी घोषणा जैसे भूचाल ला देती है।
हाँ।
तो कहानी का मंच है क्रिस्टल, कोलोराडो। ये एक काल्पनिक शहर है, पर आप सोच सकते हैं, खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा प्रोग्रेसिव सोच वाला अमीर सा।
हाँ, जहाँ पढ़े लिखे अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं, अपने उदारवादी मूल्यों पर गर्व करने वाले।
बिल्कुल, एकदम परफेक्ट तस्वीर जैसी।
और इसी परफेक्ट तस्वीर के बीच रहते हैं चार परिवार। इनकी दोस्ती कई सालों से चली आ रही है। बच्चे साथ स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, परिवार साथ वीकेंड मनाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने वो जो पेरेंटिंग की मुश्किलें हैं ना,
हाँ,
उनका एक बढ़िया बैलेंस ढूंढ लिया है, एक शांत अच्छा माहौल।
मगर ये शांति, ये सौहार्द एक ईमेल आने के बाद बिखरना शुरू हो जाता है।
वो ईमेल। हाँ
घोषणा होती है क्रिस्टल एकेडमी की।
हाँ
ये एक नया पब्लिक चार्टर स्कूल होगा, मतलब सरकारी पैसे से चलेगा लेकिन ऑटोनॉमी ज्यादा होगी।
और ये स्कूल सिर्फ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है।
और एंट्री कैसे?
सिर्फ एक इंटेलिजेंस टेस्ट से।
बस।
और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है।
हाँ, वो ईमेल जैसे एक चिंगारी का काम करता है।
बिल्कुल। जो शांति की चादर ओढ़े सब बैठे थे, उसके नीचे दबी हुई महत्वाकांक्षा, जलन, डर, सब कुछ सतह पर आने लगता है। जो कल तक गहरे दोस्त थे, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखने लगते हैं।
सही।
यही उपन्यास का वो बड़ा सवाल उभरता है, अपने बच्चों की सफलता के लिए अच्छे खासे नेक इरादे वाले लोग भी किस हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं।
हाँ, वो नैतिक समझौते वाली लकीर कहाँ है?
हाँ, कहाँ है वो लाइन?
बिल्कुल। और इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलते हैं उन चार मुख्य परिवारों की यात्रा के जरिए, खासकर उन चार महिलाओं के नजरिए से जो इस कहानी के केंद्र में हैं।
जी, ये चार परिवार हैं। एक तरफ है रोज और उनके पति गैरेथ। रोज थोड़ी चिंता करने वाली परफेक्शनिस्ट माँ है, जबकि गैरेथ ज्यादा सहज है। फिर है समांथा और डेविड। समांथा तो एक बेहद कामयाब टेक उद्यमी है, डेविड न्यूरोलॉजिस्ट। ये काफी अमीर और महत्वाकांक्षी हैं।
हाँ।
तीसरा परिवार है अजरा और बेक का। अजरा एक डॉक्टर है जो समुदाय में हमेशा थोड़ा बाहरी सा महसूस करती हैं। आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं।
हाँ, चलिए इन महिलाओं के अंदरूनी दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। रोज, रोज को हम कहानी की धुरी कह सकते हैं, है ना?
बिल्कुल।
वो दिल की अच्छी है, अपनी बेटी एम्मा को लेकर फिक्रमंद भी है, लेकिन ये फिक्र कब जुनून में बदल जाती है पता ही नहीं चलता।
हाँ, उसकी कहानी देखना काफी दुखद है। शुरुआत में वो स्कूल और होड़ को लेकर कितनी नफरत जताती है।
हाँ, बिल्कुल। वो कहती है कि हम थोड़ी टाइगर मॉम्स हैं।
हाँ, हम इस पागलपन में नहीं पढ़ेंगे।
लेकिन फिर धीरे धीरे दबाव में आकर वो खुद उसी जाल में फंसती जाती है।
महंगे ट्यूटर रखना, दूसरे बच्चों के बारे में जानकारी जुटाना,
यहाँ तक कि वो अनैतिक तरीकों के बारे में सोचने लगती है।
उसका ये बदलाव देखना बड़ा मार्मिक है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव अच्छे अच्छों के इरादों को डिगा सकता है।
और उसके पति गैरेथ का क्या? वो तो ज्यादा जमीनी लगता है।
लगता तो है, लेकिन वो भी इस चिंता के भंवर में खिंचता चला जाता है। वो भी पूरी तरह बच नहीं पाता।
दूसरी तरफ है समांथा। वो इस ग्रुप की अल्फा है कह सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। आत्मविश्वास से भरी, अमीर और अपने जुड़वां बेटों एडन और चार्ली के लिए बेहद महत्वाकांक्षी।
उसके लिए क्रिस्टल एकेडमी क्या है? बस एक और ट्रॉफी?
बिल्कुल, जिसे जीतकर वो अपने परिवार का रुतबा साबित करना चाहती है। उसकी कहानी नैतिक पतन की कम और पहले से मौजूद एक तरह की निर्मम व्यवहारिकता के खुलकर सामने आने की ज्यादा लगती है।
हाँ, उसमें कोई हिचक नहीं दिखती।
एकदम, वो अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं झिझकती। जैसे वो कोशिश करती है कि उसके एक बेटे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिल जाए
ताकि उसे टेस्ट में ज्यादा वक्त मिल सके।
हाँ, ये देखकर लगता है कि उसके लिए नियम कायदे शायद मायने ही नहीं रखते।
और उसके पति डेविड?
डेविड को ये ठीक नहीं लगता। वो नैतिक रूप से असहज है, पर वो ज्यादातर चुप रहता है या समानता को रोक नहीं पाता। उनके बीच का तनाव दिखाता है कि कैसे पैसे और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब इतनी महत्वाकांक्षा हो।
फिर है अज़रा। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा सहानुभूति पाठक को उसी के साथ महसूस होती है।
हाँ, हो सकता है। वो उस ज्यादातर श्वेत समुदाय में एक अश्वेत डॉक्टर है और उसे हमेशा ये महसूस होता है कि वो पूरी तरह उस दुनिया का हिस्सा नहीं है,
फिट नहीं होती।
उसकी
सबसे बड़ी चिंता है अपने बेटे जी को किसी भी तरह के सिस्टम के नुकसान से बचाना।
उसकी यात्रा एक बढ़ती हुई हताशा की कहानी है।
हाँ,
वो अपनी डॉक्टरी नैतिकता और माँ की ममता के बीच बुरी तरह फंसी हुई है
और इसी कश्मकश में, इसी डर में कि कहीं उसका बेटा पीछे ना रह जाए,
वो एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसके नतीजे पूरे समुदाय के लिए बहुत भारी पड़ते हैं।
और उसके पति बेक,
री होने का एहसास और अपने बच्चे को बचाने की वो जो तीव्र इच्छा होती है, वो इंसान को खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है।
बहुत दुखद। और आखिर में लॉरेन?
हाँ, लॉरेन और ज़ैंडर, वो इस अमीर मंडली के आर्थिक किनारे पर खड़े हैं।
कलाकार हैं, छोटे घर में रहते हैं
और उन्हें अपनी माली हालत का हमेशा एहसास रहता है। उनके लिए क्रिस्टल अकादमी सिर्फ शान की बात नहीं है,
उनके लिए तो ये उनकी बेटी टेसा के भविष्य के लिए एक लाइफलाइन जैसी है।
बिल्कुल, एक बेहतरीन मुफ्त शिक्षा जो वो शायद कभी अफोर्ड नहीं कर पाते।
और यही आर्थिक तंगी, ये एहसास कि वो दूसरों से कम है,
यही लॉरेन को ऐसे फैसले लेने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो उसके अपने ही मूल्यों के खिलाफ जाते हैं। उसकी कहानी बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे पैसों की कमी इंसान की नैतिकता पर भारी पड़ सकती है।
जब जरूरतें हावी हों तो शायद ऊंचे आदर्शों पर टिके रहना एक लग्जरी बन जाता है।
बिल्कुल।
और इन चारों महिलाओं की दोस्ती का क्या होता है? वो तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कैजुअलिटी है ना?
हाँ, जो रिश्ता कभी एक दूसरे के सहारे का था, वो धीरे धीरे शक, छुपी हुई प्रतिस्पर्धा और आखिर में खुले विश्वासघात में बदल जाता है, ये देखना काफी निराशाजनक है।
हाँ, और ये सब कैसे होता है, ये कहानी के आगे बढ़ने के साथ परत दर परत खुलता है। उपन्यास की बनावट भी काफी कसी हुई है।
हाँ, लगभग एक थ्रिलर की तरह।
हाँ, जो एक समुदाय के नैतिक पतन की कहानी कहता है।
कहानी का पहला हिस्सा तो उस ईमेल के धमाके से शुरू होता है।
शुरुआत में सब दोस्त कस्में खाते हैं कि ये स्कूल, ये टेस्ट
उनकी दोस्ती पर असर नहीं डालेगा।
हाँ, लेकिन ये वादे कितनी जल्दी खोखले साबित होते हैं।
बिल्कुल।
चोरी छुपे आईक्यू टेस्ट पर रिसर्च होने लगती है, बेस्ट ट्यूटर कौन है इसकी तलाश।
हाँ, एक दूसरे की तैयारियों पर नजर रखी जाने लगती है।
दोस्ती की गर्मजोशी की जगह एक अजीब सी खामोश सतर्कता ले लेती है।
फिर आता है दूसरा पड़ाव, हथियारों की होड़ और नैतिक समझौतों का दौर।
जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, ये होड़ और तेज हो जाती है।
माँ बाप अब खुलकर नैतिक सीमाएं लांघने लगते हैं। सामान्था बेटे के लिए डायग्नोसिस जुगाड़ने में लगी है।
अज़रा अपने डॉक्टर होने का फायदा उठाने के बारे में सोचने लगती है।
लॉरेन तो गैर कानूनी तरीके से टेस्ट पेपर हासिल करने की साजिश में शामिल होने पर विचार करती है।
सोचिए, छोटी छोटी रियायतें अब बड़े गुनाहों का रास्ता खोल रही होती हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि ये परीक्षा का तनाव सिर्फ बच्चों के भविष्य तक सीमित नहीं रहता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
पुरानी दबी हुई रंजिशें, पुराने अफेयर, छुपी हुई पैसों की दिक्कतें, प्रोफेशनल जलन, सब कुछ सतह पर आ जाता है।
एक बड़ा मोड़ तब आता है जब रोज को पता चलता है कि उसकी एक सबसे करीबी दोस्त ने उसके भरोसे को कितनी बुरी तरह तोड़ा है।
हाँ, तब उसे एहसास होता है कि ये खेल अब सिर्फ बच्चों का नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा पर्सनल और खतरनाक हो चुका है।
और फिर आता है तीसरा और सबसे विस्फोटक हिस्सा, परीक्षा का दिन और उसके तुरंत बाद का घटनाक्रम,
क्लाइमैक्स।
हाँ,
अलग अलग माँ बाप की जो छुपी हुई योजनाएं चल रही थी, वो सब आपस में टकराती हैं और एक बड़े पब्लिक स्कैंडल का रूप ले लेती हैं।
धोखाधड़ी का पर्दाफाश होता है और वो भी बड़े नाटकीय ढंग से,
और कई मुख्य किरदार इसमें सीधे तौर पर शामिल पाए जाते हैं।
यहाँ लेखक का फोकस कानूनी सजा पर उतना नहीं है,
नहीं,
जितना सामाजिक और भावनात्मक तबाही पर है।
हाँ, और ये सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है कि पर्दाफाश किसी बाहरी एजेंसी ने नहीं किया,
बल्कि ग्रुप के अंदर से ही हुआ।
हाँ, विश्वासघात का एक आखिरी सबसे कड़वा घूंट जिसने दोस्ती के धागों को हमेशा के लिए तोड़ दिया।
प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है, शादियां टूटने की कगार पर आ जाती हैं,
और बच्चे अपने माँ बाप के किए की कीमत चुकाते हैं।
उपन्यास का चौथा और आखिरी हिस्सा इसी बिखराव को समेटने की कोशिश करता है, या यूं कहें कि बिखराव के साथ जीने की शुरुआत दिखाता है।
हाँ, परिवार अपनी जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, परीक्षा के नतीजे आते हैं, कुछ बच्चों को अकादमी में दाखिला भी मिल जाता है,
लेकिन ये जीत इतनी कड़वाहट के बाद खोखली रखती है।
बिल्कुल, माँ बाप को ये सामना करना पड़ता है कि उन्होंने अपने बच्चों को, एक दूसरे को और अपनी खुद की आत्मा को कितना नुकसान पहुंचाया है।
कहानी का अंत कोई साफ सुथरा सब ठीक हो गया वाला नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक उदास ठहराव है जहाँ कुछ रिश्ते शायद वक्त के साथ जुड़ जाएं, लेकिन कई हमेशा के लिए टूट चुके हैं।
किरदार बदल चुके हैं, उनके मन के भ्रम टूट चुके हैं।
क्रिस्टल एकेडमी खुलती जरूर है, लेकिन उसकी नींव में पड़े नैतिक समझौतों का दाग वो कभी नहीं मिटता।
ये कहानी कई गहरे विषयों को कुरेदती है। सबसे पहला तो यही, आधुनिक पेरेंटिंग का संकट।
हाँ, कैसे बच्चे की भलाई की नेक इच्छा धीरे धीरे बच्चे की सफलता के साथ माँ बाप के अपने अहंकार के पोषण का जरिया बन जाती है,
जहाँ गिफ्टेड का लेबल बच्चे की खुशी से ज्यादा जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल,
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे बच्चों का भला समझ रहे हैं, कहीं वो हमारे अपने अधूरे सपनों का बोझ तो नहीं।
हाँ, कुछ समीक्षकों ने इसे माता पिता के प्यार का भ्रष्टाचार तक कहा है।
अच्छा,
दूसरा बड़ा मुद्दा है वर्ग, विशेषाधिकार और वो जो योग्यता का भ्रम है उसका,
मेरिटोक्रेसी का मिथक।
हाँ, उपन्यास दिखाता है कि कैसे पैसा और सामाजिक रुतबा पूरी व्यवस्था को झुका सकता है। महंगे ट्यूटर, मनोवैज्ञानिकों तक पहुंच, अंदर की जानकारी,
ये मेरिटोक्रेसी के दावे को खोखला साबित करता है।
बिल्कुल, लॉरेन और जेंडर का संघर्ष सामान्था की बेफिक्री के सामने कितना तीखा लगता है।
सही,
दोस्ती और समुदाय के रिश्तों की नाजुकता भी एक अहम विषय है। कैसे बाहरी दबाव, खासकर प्रतिस्पर्धा, दोस्तों को दुश्मन बना देती है। ये दिखाता है कि हमारे सामाजिक बंधन कितने सतही और
स्वार्थ पर टिके हो सकते हैं,
जो जरा सी आंच लगते ही टूट जाते हैं।
हाँ,
और फिर वो नैतिक पतन की फिसलन भरी ढलान, ये बहुत शक्तिशाली ढंग से दिखाया गया है।
हाँ, ये बहुत प्रभावी है।
कोई भी किरदार शुरुआत में बुरा नहीं है, वो सब छोटी छोटी, कोई बात नहीं वाली लगने वाली रियायतों से शुरुआत करते हैं।
एक छोटा झूठ, एक अनदेखी, थोड़ी सी हेरा फेरी,
और धीरे धीरे वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बड़े नैतिक उल्लंघन भी जायज लगने लगते हैं।
ये धीमी गति से होता शरण देखना काफी डरावना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें अपनी कमजोरियों का आईना दिखाता है।
बिल्कुल,
अंत में उपन्यास खुद गिफ्टेड होने के विचार पर ही सवाल उठा देता है।
हाँ, कि ये गिफ्टेडनेस है क्या? क्या ये सचमुच कुदरती प्रतिभा है, या कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा, या फिर सिर्फ अमीरी से खरीदा जा सकने वाला एक लेबल?
कहानी के अंत तक आते आते गिफ्टेड शब्द अपना सारा मतलब खो देता है।
वो सिर्फ रुतबे का एक खोखला निशान बनकर रह जाता है।
कुछ
और पहलू भी हैं जिन पर ध्यान जाते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा के मनोवैज्ञानिक कीमत क्या होती है।
सही,
जब आपकी पहचान और आत्मसम्मान पूरी तरह आपकी या आपके बच्चे की उपलब्धि से जुड़ जाए, तो उसका क्या असर होता है? ये सब सवाल भी कहानी में गूंजते रहते हैं।
और जिस तरह से कहानी कही गई है वो भी कमाल है।
हाँ, वो नैरेटिव स्टाइल।
हाँ, होल्सिंगर ने वो थर्ड पर्सन ओमनिशियंट नैरेटिव का इस्तेमाल किया है, मतलब वो हमें चारों मुख्य महिलाओं, रोज, सामंथा, अज़रा और लॉरेन के विचारों और भावनाओं की दुनिया में बारी बारी से ले जाते हैं।
इससे हमें हर किरदार की अपनी वजहें, उनके डर, उनके तर्क सब समझ आते हैं।
बिल्कुल, और इससे एक कमाल की ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती है।
हाँ, पाठक अक्सर उन रहस्यों और धोखों से वाकिफ होता है जो दूसरे किरदारों को नहीं पता होते।
इससे तनाव लगातार बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने ही वाला हो।
हाँ, आप किरदारों के लिए फिक्रमंद भी होते हैं और कभी कभी उनकी मूर्खता पर हैरान भी।
होल्सिंगर की भाषा बहुत सटीक और पैनी है, जिसमें व्यंग्य की धार है। वो उस खास किस्म के पढ़े लिखवे उदारवादी उच्च मध्यम वर्ग की भाषा, उनकी चिंताओं, उनके दिखावों को बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं।
इसमें एक असहज किस्म का हास्य भी है।
हाँ, जो आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ये हमारी अपनी दुनिया का अक्स तो नहीं।
बिल्कुल, प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी सटल है लेकिन असरदार, जैसे शहर का नाम क्रिस्टल।
हाँ, जो पारदर्शिता और शुद्धता का आभास देता है लेकिन कहानी उसके नीचे छिपे नैतिक खोखलेपन को उजागर करती है।
और खुद क्रिस्टल एकेडमी, वो उस अप्राप्य पूर्णता और अभिजात्य महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन जाती है जो अंततः सबको भ्रष्ट कर देती है।
उपन्यास की संरचना भी किसी थ्रिलर से कम नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेखक ने बड़ी सावधानी से घटनाओं के बीज बोए हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता है और क्लाइमेक्स तक पहुंचता है।
ये घरेलू कहानी होते हुए भी मनोविज्ञानिक रहस्य कथा का एहसास देती है।
कहानी में कुछ संवाद और विचार ऐसे हैं जो उसके मर्म को पकड़ते हैं।
हाँ, जैसे शुरुआत में जब रोज सोचती है कि उसके दोस्त कितने समझदार हैं, वो कभी भी टाइगर मॉम्स वाले पागलपन का शिकार नहीं होंगे।
हाँ, ये लाइन पढ़कर बाद में कितना व्यंग्यात्मक लगता है। ये शुरुआत में किरदारों की खुद के बारे में बनाई गई अच्छी छवि को दिखाता है,
जिसे कहानी बाद में तार तार कर देती है।
बिल्कुल, ये इस बात का इशारा है कि सही हालात और दबाव में कोई भी अपने उसूलों से डिग सकता है। हम सब सोचते हैं कि हम अलग हैं, पर क्या सच में हैं?
और एक जगह बहस में जब एक किरदार दूसरे से कहता है, ये सब कभी बच्चों के बारे में था ही नहीं, ये हमेशा तुम्हारे बारे में था।
उफ़, ये तो सीधा उपन्यास के दिल पर चोट करता है। हाँ,
ये उस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि कैसे माँ बाप का अपने बच्चों की सफलता के लिए जुनून अक्सर उनके अपने अहंकार, उनकी अपनी सामाजिक असुरक्षाओं से जुड़ा होता है।
बच्चे तो बस उस खेल के मोहरे बन जाते हैं जो बड़े खेल रहे होते हैं।
और स्कैंडल के बाद जब दोस्ती के मलबे के बीच एक किरदार सोचता है कि इस नए स्कूल ने उन्हें जो असली तोहफा दिया,
वो ये भयानक सच्चाई थी कि वो सब असल में कौन थे।
क्या विडंबना है, गिफ्टेड बच्चों के लिए बना स्कूल असल में माँ बाप के चरित्र की परीक्षा बन गया।
सही,
संकट ने उनके सारे नकाब उतार दिए, उनके अंदर छिपे डर, महत्वाकांक्षा और यहाँ तक कि क्रूरता को भी उजागर कर दिया।
यही शायद उपन्यास की सबसे दुखद सीख है। असली परीक्षा बच्चों की नहीं, बड़ों के किरदार की थी,
और ज्यादातर उसमें बुरी तरह फेल हो गए।
भावनात्मक स्तर पर यह उपन्यास पाठक को झकझोर देता है।
हाँ, आप इसे पढ़ना बंद नहीं करना चाहते। कहानी आपको बांधे रखती है लेकिन साथ ही आपको बहुत असहज और उदास भी करती है।
ये एक आईने की तरह है और कई लोगों को, खासकर माँ बाप को, इसमें अपनी या अपने आसपास की दुनिया की परेशान करने वाली झलक दिख सकती है।
बिल्कुल,
ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक दबाव कितना हावी हो सकता है, हमारे अपने मूल्य क्या हैं, अच्छी पेरेंटिंग किसे कहते हैं,
सफलता का मतलब क्या सिर्फ अकादमिक या पेशेवर उपलब्धि है।
हाँ, ये बिना नैतिक दिशा के सिर्फ महत्वाकांक्षा के पीछे भागने के खतरों के बारे में एक चेतावनी है।
ये माँ बाप की आकांक्षाओं को एक अलग, ज्यादा स्याह रोशनी में दिखाता है।
और अंत में ये सिर्फ किरदारों को जज नहीं करता,
नहीं,
बल्कि उनकी मानवीय कमजोरियों के प्रति एक तरह की सहानुभूति भी जगाता है। शायद इसीलिए ये इतना असरदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाठक को लगता है कि शायद वो भी ऐसे ही हालात में ऐसे ही समझौते कर बैठता। ये पहचान थोड़ी डरावनी भी है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सफलता की अंधी दौड़ में हम कितनी आसानी से अपने मूल्यों, अपने रिश्तों और शायद अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा देते हैं।
या शायद ये कि असली प्रतिभा डिग्रियों या टेस्ट स्कोर में नहीं,
बल्कि मुश्किल वक्त में अपने चरित्र को बनाए रखने की क्षमता में है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।